नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। एनडीए के उम्मीदवार भाजपा के सांसद ओम बिड़ला और विपक्षी इंडिया गठबंधन की ओर से कांग्रेस के सांसद के सुरेश ने लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए नामांकन भरा। 18वीं लोकसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों का शपथ ग्रहण कार्यक्रम आज दूसरे दिन भी जारी। अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन परिषद की बैठक नई दिल्ली में शुरू। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने गन्ने के टिकाऊ और विविध उत्पादन के लिए वैश्विक सहयोग का आह्वान किया। विकिलीक्स के संस्थापक जूलियन असांजे अमरीकी अधिकारियों के साथ समझौते के बाद ब्रिटेन की जेल से रिहा। 500 से अधिक अंकों के उछाल के साथ सेंसेक्स अब तक के उच्चतम स्तर पर, निफ्टी ने भी नया रिकॉर्ड बनाया। और 2020 विश्व कप क्रिकेट में अफगानिस्तान रोमांचक मुकाबले में बांग्लादेश को हराकर पहली बार सेमीफाइनल में पहुंचा, ऑस्ट्रेलिया प्रतियोगिता से बाहर। दोपहर समाचार के साथ मैं लवली निगम। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ सांसद ओम बिड़ला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के उम्मीदवार होंगे, जबकि विपक्षी इंडिया गठबंधन ने इस पद के लिए कांग्रेस के सांसद के सुरेश को अपना उम्मीदवार बनाया है। दोनों उम्मीदवारों ने अध्यक्ष पद के लिए आज अपना नामांकन भरा। अध्यक्ष का चुनाव कल होगा। इससे पहले सरकार और विपक्ष इस पद के लिए आम सहमति तक पहुंचने में असफल रहे हैं। संसद के बाहर मीडिया से बातचीत में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह, जगत प्रकाश नड्डा ने इस मुद्दे पर कांग्रेस के नेता के सी वेणुगोपाल और जीएम के नेता टी आर बालू के साथ बैठक की। विपक्ष के नेता श्री बिड़ला की उम्मीदवारी पर समर्थन देने से पहले उपाध्यक्ष के नाम की घोषणा करने पर जोर दे रहे थे। श्री गोयल ने कहा कि उन्हें सूचित कर दिया गया है कि उपाध्यक्ष का मुद्दा इसके चुनाव के समय निपटाया जाएगा। उन्होंने कहा कि विपक्ष शर्त रख रहा है जिसे सरकार खारिज कर चुकी है।
अच्छी परंपरा ये रहती कि लोकसभा निर्विरोध एक सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुनता तो लोकसभा की भी मर्यादा अच्छी रहती, सभी पक्ष का उसमें योगदान रहता और स्पीकर वैसे भी किसी सत्तारूढ़ पार्टी या विपक्ष का नहीं होता है, वो पूरे सदन का होता है। वैसे ही उपाध्यक्ष भी कोई पार्टी या दल का नहीं होता, पूरे सदन का होता है। और इसलिए उसमें सदन की सहमति हो ऐसे शर्तों के आधार पर कि किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति या पर्टिकुलर पक्ष का ही उपाध्यक्ष हो, वो लोकसभा की कोई परंपरा में नहीं बैठे।
इससे पहले कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष अध्यक्ष उम्मीदवार को अपना समर्थन देने के लिए तैयार है, लेकिन उपाध्यक्ष पद के लिए विपक्षी पार्टी का उम्मीदवार होना चाहिए।
राजनाथ सिंह जी ने खारगे जी से कहा, देखिए आप हमारे स्पीकर को सपोर्ट कीजिए। पूरी ऑपोजिशन ने कहा है कि हम स्पीकर को सपोर्ट करेंगे, मगर कन्वेंशन यह है कि डेप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन को मिलना चाहिए।
हमारे संवाददाता ने बताया है कि लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव स्वाधीनता के समय से बिना किसी प्रतिस्पर्धा के होता है, लेकिन यह पहली बार है जब इस पद के लिए चुनाव हो रहा है। केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता चिराग पासवान ने संसद भवन परिसर में भी संवाददाताओं से कहा कि लोकसभा अध्यक्ष के पद को लेकर विपक्षी इंडिया गठबंधन के रूख पर सवाल उठाया है। केंद्रीय मंत्री और तेलुगु देशम पार्टी के नेता राम मोहन नायडू ने कहा कि सरकार ने विपक्ष को विश्वास में लेने की कोशिश की, लेकिन विपक्ष ने उपाध्यक्ष के पद को लेकर अपनी शर्त रख दी। इस बीच लोकसभा अध्यक्ष के लिए विपक्ष के उम्मीदवार के सुरेश ने कहा है कि परंपरा के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष का पद सत्ता पक्ष और उपाध्यक्ष का पद विपक्ष के पास रहता है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने पिछले दो कार्यकाल में भी विपक्ष को यह जिम्मेदारी नहीं दी थी। 18वीं लोकसभा का दूसरा दिन नवनिर्वाचित सांसदों के सदन के सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण के साथ शुरू हुआ। कांग्रेस के गोपाल कागड़ा पदवी ने हिंदी में शपथ ग्रहण की, जबकि सांसद बच्चव शोभा ने मराठी में शपथ ली। भारतीय जनता पार्टी के सांसद स्मिता उदयवाग ने मराठी में शपथ ग्रहण की। वहीं सांसद अनूप संजय धोत्रे, कांग्रेस के बलवंत बासवंत वांगखेड़े, एनसीपी शरद पवार के अमर शरद राव काले, कांग्रेस के श्याम कुमार दौलत बारवे, शिवसेना के डॉ श्रीकांत एकनाथ शिंदे, शिवसेना के नरेश गणपत महस्के और अन्य सांसदों को भी शपथ दिलाई गई। शपथ ग्रहण कार्यक्रम जारी है। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने आज संसद भवन में राज्यसभा के नवनिर्वाचित सदस्य सुनेत्रा अजीत पवार को शपथ दिलाई। इस अवसर पर सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश भी उपस्थित थे। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं। केंद्रीय उपभोक्ता कार्य खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने गन्ने के टिकाऊ और विविध उत्पादन के लिए वैश्विक सहयोग का आह्वान किया है। दिल्ली में 64वीं अंतर्राष्ट्रीय गन्ना संगठन आईएसओ परिषद की बैठक के दौरान एक कार्यशाला में श्री जोशी ने कहा कि किसी योजना का कार्यान्वयन करते हुए उपभोक्ता किसानों और उद्योग के हितों में संतुलन स्थापित करना आवश्यक है। मीडिया से बातचीत में श्री जोशी ने बताया कि भारत अंतर्राष्ट्रीय गन्ना संगठन की बैठक की मेजबानी 12 वर्ष के बाद कर रहा है। इस बैठक में किसानों के कल्याण, उपभोक्ता कल्याण और जल संरक्षण पर नए विचारों पर मंथन किया जाएगा।
12 वर्ष के बाद पहली बार आईएसओ का मीटिंग कॉन्फ्रेंस इधर चल रहा है। जैसे मैंने कहा, वैरायटी इम्प्रूवमेंट में फार्मर्स वेलफेयर के लिए, कंज्यूमर वेलफेयर के लिए और वाटर सेविंग के लिए, क्योंकि दिस इज वन ऑफ दी क्रॉप व्हिच कंज्यूम्स हाईएस्ट वाटर, और उसके साथ कंज्यूमर और फार्मर्स का भी हमको ख्याल रखना है। एंड इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड द हाईएस्ट कंज्यूमर ऑफ द वर्ल्ड। इसका एक बाई प्रोडक्ट है बायोफ्यूल भी, इसके बारे में भी अच्छा काम होना चाहिए।
तीन दिवसीय बैठक में 30 से अधिक देश और कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि गन्ना और जैव ईंधन क्षेत्र के महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श करने के लिए भागीदारी कर रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में व्यापार और सेवा क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ 7वीं बजट पूर्व परामर्श बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन, वित्त सचिव टीवी सोमनाथन, व्यय विभाग के सचिव, आर्थिक कार्य विभाग के सचिव और वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय ने भागीदारी की। कल सुश्री सीतारामन ने व्यापार और श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बजट पूर्व बैठक की थी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के माध्यम से परीक्षाओं के पारदर्शी, सुचारू और निष्पक्ष संचालन को सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा गठित विशेषज्ञों की उच्च स्तरीय समिति की कल पहली बैठक हुई। समिति के अध्यक्ष डॉ के राधाकृष्णन ने नई दिल्ली में कहा कि समिति की प्राथमिकता छात्रों और अभिभावकों की चिंताओं और सुझावों को जानना है और इसके लिए उनसे बातचीत की जाएगी।
First priority for us is to elicit from the students and parents of this country their concerns and their suggestions. We are going to engage with them as far as possible in person or through the electronic media. The next priority for us, a robust system, a tamper-proof system, a system with zero error and a system that will lessen the difficulties and stress for the students.
सरकार ने इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉ के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विशेषज्ञों की 7 सदस्य समिति का गठन किया है। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने बिहार, गुजरात और राजस्थान में राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी में कथित अनियमितताओं के 5 मामलों की जांच शुरू कर दी है। सीबीआई ने गुजरात और बिहार में नए सिरे से एक एक मामला दर्ज किया है, वहीं राजस्थान में भी 3 मामले दर्ज किए गए हैं। सीबीआई महाराष्ट्र के लातूर का एक अन्य मामला भी अपने हाथों में ले सकती है। महाराष्ट्र में नांदेड़ के आतंकवाद निरोधक दस्ते ने लातूर के शिवाजीनगर थाने में 4 लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है। उन पर राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा 2024 के अभ्यर्थियों को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अवैध सहायता देने का, गिरोह चलाने का आरोप है। दिल्ली के प्रेम नगर में आज एक घर में आग लगने से 4 लोगों की मौत हो गई। अग्निशमन सेवा के अनुसार आग सुबह 3:30 पर लगी। मौके पर पहुंची दमकल की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। पिछले कुछ दिनों के दौरान दिल्ली को कुछ हिस्सों में बारिश के बावजूद जल संकट का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी का शुगर स्तर कम होने के बाद उन्हें लोकनायक अस्पताल में भर्ती कराया गया और उन्होंने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल आज स्थगित कर दी। इस बीच भाजपा ने आरोप लगाया है कि श्रीमती आतिशी का सत्याग्रह विफल होना ही था, क्योंकि यह झूठ पर आधारित था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने तमिलनाडु के कल्लाकुरिची जिले में जहरीली शराब पीने से हुई लोगों की मृत्यु पर मीडिया की खबरों पर स्वतः संज्ञान लिया है। मीडिया की खबरों का हवाला लेते हुए आयोग ने मुख्य सचिव पुलिस महानिदेशक और तमिलनाडु सरकार को एक सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट देने का नोटिस जारी किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विकिलीक्स के संस्थापक जूलियन असांजे को अमरीकी अधिकारियों के साथ समझौते के बाद ब्रिटेन की जेल से रिहा कर दिया गया है। इसमें असांजे को राष्ट्रीय रक्षा जानकारी प्राप्त करने और उसका खुलासा करने की साजिश के आपराधिक आरोपों में दोषी ठहराया गया। विकिलीक्स ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जेल में 5 साल से अधिक समय गुजारने के बाद लंदन के उच्च न्यायालय ने असांजे को जमानत दे दी है। शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक बीएसई सेंसेक्स आज 590 अंकों के उछाल के साथ 77,900 के स्तर के ऊपर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 50 ने दोपहर के कारोबार के दौरान 140 अंक से अधिक की बढ़त के साथ 23,600 के स्तर पर एक नया शिखर दर्ज किया है। आईसीसी 2020 विश्व कप क्रिकेट के सेमीफाइनल मुकाबले तय हो गए हैं। पहले सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला बृहस्पतिवार को गयाना में पिछली बार के चैंपियन इंग्लैंड से होगा। दूसरे सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका और अफगानिस्तान आमने सामने होंगे। अफगानिस्तान पहली बार टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंचा है। एक रिपोर्ट।
आज सुबह किंगस्टन में सुपर 8 के दूसरे मुकाबले में अफगानिस्तान ने एक रोमांचक मैच में बांग्लादेश को डकवर्थ लुईस नियम के आधार पर 8 रन से हरा दिया। अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर पहले ही सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर कर दिया है। आज के मैच में मध्यम तेज गेंदबाज नवीन उल हक ने 4 विकेट लेकर अफगानिस्तान को जीत दिलाई। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट पर 115 रन बनाए। दोबार बारिश के कारण हित मैच में लक्ष्य को 19 ओवर में 114 रन तक सीमित कर दिया गया। भारत ने कल शाम सेंट लुसिया में सुपर 8 मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को 24 रन से हरा दिया। रोहित शर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1975 में आपातकाल का विरोध करने वाले सभी लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि यह दिन याद दिलाता है कि कैसे कांग्रेस पार्टी ने बुनियादी स्वतंत्रता को नष्ट कर दिया और देश के संविधान को कुचल दिया। उन्होंने कहा कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने सभी लोकतांत्रिक सिद्धांतों की अवहेलना की और देश को जेल बना दिया। उन्होंने कहा कि ये वही लोग हैं जिन्होंने अनेक मौकों पर अनुच्छेद 356 लगाया, प्रेस की स्वतंत्रता को नष्ट करने के लिए विधेयक लाए, संघवाद को नष्ट किया और संविधान के हर पहलू का उल्लंघन किया। केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि 25 जून 1975 वो दिन है जब आपातकाल लगाने के कांग्रेस पार्टी के राजनीतिक रूप से प्रेरित फैसले ने देश के लोकतंत्र के स्तंभ को हिला दिया था और संविधान को कुचलने की कोशिश की थी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नड्डा ने कहा कि इस अवधि के दौरान जो लोग आज भारतीय लोकतंत्र के संरक्षण होने का दावा करते हैं, उन्होंने संवैधानिक मूल्यों की रक्षा में उठने वाली आवाज को दबाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिरीक्षक वी के विर्दी ने कल श्रीनगर में एक बैठक के दौरान श्री अमरनाथ यात्रा के शांतिपूर्ण संचालन की व्यवस्था का जायजा लिया। इस अवसर पर पुलिस महानिरीक्षक को संबंधित जिलों की विभिन्न आवश्यकता और अमरनाथ यात्रा के सुचारू संचालन के लिए भी जानकारी दी गई। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। एनडीए के उम्मीदवार भाजपा के सांसद ओम बिड़ला और विपक्षी इंडिया गठबंधन की ओर से कांग्रेस के सांसद के सुरेश ने लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए नामांकन भरा। 18वीं लोकसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों का शपथ ग्रहण कार्यक्रम आज दूसरे दिन भी जारी। अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन परिषद की बैठक नई दिल्ली में शुरू। विकिलीक्स के संस्थापक जूलियन असांजे अमरीकी अधिकारियों के साथ समझौते के बाद ब्रिटेन की जेल से रिहा। और 2020 विश्व कप क्रिकेट में अफगानिस्तान रोमांचक मुकाबले में बांग्लादेश को हराकर पहली बार सेमीफाइनल में पहुंचा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।